सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमनोमम गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुदकेवलीभणिदम्। यह कुंद कुंद आचार्य भगवान का समय सार जो है, उस समय सार के हम सोलहवें नंबर की गाथा देख रहे हैं। तो ये सोलह नंबर की गाथा को हम देख रहे थे और हम पृष्ठ क्रमांक सात पर आए थे। देखो, इस सात पर हमने ये देखा था कि यहाँ तो यही बात बता रहे हैं गाथा में कि साधु पुरुषों ने यह आत्मा को ही भाना चाहिए और वह आत्मा का अनुभव करने के लिए दो पद्धति बताई थी, एक साध्य भाव से और एक साधक भाव से। देखो, साधक भाव तो वह पर्याय में जो अपूर्णता है जिस जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की है वह है साधक भाव, अपूर्ण दशा, सम्यक अपूर्ण दशा। और साध्य भाव यानि यह साध्य यानि जो आत्मा की जो परिपूर्ण अवस्था है वह साध्य भाव। तो यहाँ कह रहे साध्य भाव और साधक भाव दोनों ही पद्धति से अपने आत्मा को समझना चाहिए, हाथ में उसको पकड़ना चाहिए कहो या आत्मसात करना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों ही अवस्थाओं की बात की है और दोनों ही अवस्थाओं से यानी साधक पने से साध्य को साध्य करना है, ख्याल में ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। अब उसकी विशेष बात हम आगे देखते हैं। तो हम कल सातवें पृष्ठ तक आए थे और मुझे आज बिल्कुल याद है कि मैंने कुछ याद करने के लिए आपको बोला था। तो कौन ऐसा शूरवीर है पहले बोलना चाहेगा? अच्छा, आप बहुत अच्छा। हाँ बोलो बोलो। स्वभाव आचरणता रूप अनुष्ठान ते सम्यक चारित्र। यानी देखो यहाँ पर क्या बात बताई है जो कल हमने याद करने के लिए बोला था, बिल्कुल सही याद किया है। और कोई कहना चाहेगा? हाँ हाँ बोलो बहन। अखंड अभेद एक रूप जे त्रिकाणी न्यायक भाव एनी निर्विकल्प सम्यक्त्व। ये निर्विकल्प सम्यक तो क्यों कहा उसकी बात हम देखेंगे। हाँ, एनु स्वसंवेदन ज्ञान ते सम्यक ज्ञान अने हाँ ये सम्यक चारित्र एमा लीनता स्थिरता। हाँ, आचरण रूप जे अनुष्ठान छे ते सम्यक चारित्र छे। अभी यह जो है यह साधक भाव है, कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वह साधक भाव है। इस साधक भाव से आत्मा को साधना है, आत्मा को साधक भाव से साधना है। इसका अर्थ क्या? साध्य को साधक भाव से प्राप्त करना है। तो यहाँ साध्य भाव जो कोई सिद्ध अवस्था है कहो या परिपूर्ण अवस्था है कहो, वह प्राप्त करने के लिए अन्य दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, ये बात की सिद्धि हो गई क्या? साधक भाव से साध्य भाव को पकड़ना है ना हमें, तो यहाँ बताते कि साधक भाव वो अधूराश अधूरी दशा है और साध्य भाव है वह परिपूर्ण दशा है। वह परिपूर्ण दशा जो है, परिपूर्ण सुख रूप जो दशा है, परिपूर्ण जो वीतराग रूप दशा है, उसको प्राप्त करने वाला जो कोई मार्ग होगा वह भी सुख रूप मार्ग ही होना चाहिए। वह क्लेशदायक दुख रूप ऐसा मार्ग हो ही नहीं सकता है। और जो शुभ भाव है वह दुख स्वरूप है, तो शुभ राग से शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात सिद्ध होती है। क्योंकि जिसे प्राप्त करना है वह सुख स्वरूप है और वह परिपूर्ण जो अवस्था वीतराग अवस्था है, वह वीतराग अवस्था प्राप्त करने का मार्ग भी वीतराग स्वरूप ही होगा, राग रूप नहीं होगा। बात ख्याल में आती है भाई? ऐसा तो लौकिक में कहते हैं कि भाई अभी तुम मेहनत करो, बहुत दिन में 10-10 15-15 घंटा काम करो, अभी यह जो दुख रूप जो वैली वैली समझते ना, क्या बोलते हैं आप लोग, खाई, हाँ, दुख रूप खाई के बाद सुख का डूंगर खड़ा रहेगा, यानी पहले आपको दुख झेलना पड़ेगा बाद में सुख होगा, ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता है। जैन दर्शन तो ऐसा कहता है कि तुम्हें सुख की प्राप्ति करने में जो मार्ग होगा वह भी सुख रूप ही होगा। अभी तुम बहुत तकलीफ उठाओ, 28 मूल गुण पालन करो, फिर तुम्हें ये होगा, अरे ऐसी बात नहीं है। ये भाई वो जो भाव आते हैं मुनिराज के, वो लाने नहीं पड़ते हैं, आते हैं और उस उनको वो जानते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, और उससे भी हटकर अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं और वह सुख स्वरूप ही है। ख्याल में आया? ये बिल्कुल झूठ बात है कि पहले तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा बाद में तुमको सुख प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता है। ख्याल में आया? तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं, ये साधक भाव जो है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी क्या है कि यहाँ कहते हैं निर्विकल्प श्रद्धान, क्या लिखा देखो देखो, निर्विकल्प सम्यक दर्शन, यानी क्या ऐसे भी सम्यक दर्शन होते होंगे कि सविकल्प और निर्विकल्प? हाँ इंदुबेन, क्या ऐसे भी सम्यक दर्शन है कि जो सर्व सविकल्प भी है? निर्विकल्प बताया ना यहाँ, तो दूसरा कोई होना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, और हाँ बोलो आप क्या कहना चाहते? हाँ सर निर्, अच्छा इनका कहना है सम्यक दर्शन जो होगा वह निर्विकल्प होगा। निर्विकल्प का अर्थ आप क्या कर रही हैं? हाँ विकल्प रहित यानी राग रहित, ऐसा आपका कहना है। हाँ और आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ ये सविकल्प सम्यक दर्शन जिसको कहा है व्यवहार सम्यक दर्शन, जो आप कहने में थोड़ा सा आगे पीछे कर रही थी, इन्होंने सही बताया कि उसको सविकल्प सम्यक दर्शन कहेंगे, यानी वहां राग रूप विकल्प है। देखो हमने देखा था ना व्यवहार सम्यक दर्शन, ये कौन है यानी द्रव्य गुण पर्याय में इसको हम बांटे तो उसका हमने क्या देखा था कि जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, तो विभाव पर्याय यानी वहां राग है किसके प्रति? सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति राग है, उस रूप जो अरे जिसके निश्चय होगा उसी के साथ वह व्यवहार है, तो निर्विकल्प सम्यक दर्शन यानी वहां किसी भी प्रकार का राग नहीं है, बिल्कुल वितराग ऐसा जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा कैसे वितरागता के साथ वाली श्रद्धा है। श्रद्धा का अपना अपना स्वयं का परिणाम है, लेकिन उसके साथ साथ वितरागता भी वहां मौजूद है। इसलिए कह रहे हैं कि वो जो निर्विकल्प सम्यक दर्शन, और यानी क्या कहने कि मैं यही हूं बस, ऐसे अपने प्रति जिनकी श्रद्धा पक्की हो गई है और ऐसा जिनके ज्ञान है वह है स्वसंवेदन ज्ञान जो है, यानी अपने स्वरूप का अनुभव चल रहा है उस ज्ञान को। देखो बात तो ऐसी होती है, अभी जब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें या समझना चाहे रादर, तो पहले तो ऐसा ही होता है कि आत्मा के प्रति ज्ञान चल रहा है। अब ज्ञान ने जाना है कि मैं यही हूं, जाना है। अब उसका ज्ञान जो है ना, बिल्कुल जैसा वस्तु का स्वरूप है कहो, या जिनेंद्र भगवान ने आत्मा की बात बताई है वैसा कहो, ज्ञान तो उसका बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हो गया है। लेकिन उस ज्ञान को अभी सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, कि जब श्रद्धा ने माना कि बस मैं यही हूं, बस यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं, ऐसा जब उसने माना, तब ज्ञान गुण भी तो पहले से जानता ही रहा था, अब वो स्वसंवेदन ज्ञान हो गया, यानी अभी तो उसको खात्री हो गई ना यही मैं हूं, तो उसी आत्मा को वह जानते रहा। पहले तो उसने आत्मा के बारे में जाना था, अभी स्वसंवेदन ज्ञान अपने आत्मा को उसने जाना, तो वह सम्यक ज्ञान हो गया, और उसी आत्मा को जानते रहा, रममाण हुआ, स्थिर हुआ, आचरण आचरण यानी उसी में चरना धरना चालोगे, चरना चरना यानी उसी में लीन होना, वह अनुष्ठान जो कहा, वो जो विधि है क्रिया है, उसी को सम्यक चारित्र कहा। बस यही हमें करना है, इसके अलावा कुछ करना है ही नहीं। यह जो बीच में आने वाले जो राग के परिणाम है, व्रत दया दान भक्ति आदि के जो परिणाम है वो आएंगे, लेकिन वह मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले नहीं है, ख्याल में है? वह तो संसार मार्ग है। हमने पहले पढ़ा था कि पंडित बनारसी दास जी ने तो जो मुनिराज 28 मूलगुण पालन करते उस भाव को जगपंत कहा था, भूल गए? याद है, बहुत अच्छा। और जो 28 मूलगुण पालन करने से हटकर अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाते वो मोक्ष पंथ है। तो देखो यहां तो जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष का महात्म्य ही गाया नहीं है, किसी पर्टिकुलर, यहां तो पद का वर्णन है, पद का कथन है, और पद की प्राप्ति का उसकी बात है। देखो जब हम कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के पंत प्रधान ऐसे होते हैं, तो हमने उस पद की बात करी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम लो तो उसके प्रति अगर हमारा अच्छा भाव होगा तो अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे कैसे थे कैसे थे कैसे थे, और एक चरण सिंह, हाँ, तो जिसके उसके प्रति कोई उत्साह नहीं होगा, उसके प्रति कुछ राग द्वेष के परिणाम शुरू होंगे। लेकिन पद की बात करते हैं, वैसे हम किसको नमन करते हैं बहन, सुबह से लेकर शाम तक कौन से पद को नमस्कार करती है, करती क्या नहीं तुम, कौन से बोलो बोलो कौन से, शाबाश, हाँ नवकार मंत्र में नौ पद है, कितने हैं बोलो, हाँ, नौ बार बोलती है, हाँ ठीक है, ये कहती है कि हम नौ बार उन पांच पदों को नमस्कार करते हैं, नौ पद नहीं नौ बार बोलते हैं,
हाँ। वो नमोकार का नमोकार है, वो नवकार हो गया, उसका अपभ्रंश हो गया। वो ऐसो पंच नमोकार है नहीं, ये नमस्कार है, नमस्कार को नमोकार कहा, पंच नमस्कार है।
देखो अभी आपने विषय सुनो 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 सुनो, आपने विषय निकाला है, यहाँ अभी अपना चालू विषय नहीं है, फिर भी मुझे आपको समझाने का भाव आया है। एसो पंचनमो यारो, आप नमोकारो कहो, जो भी कहना आपको कहो, एसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो। इसका अर्थ क्या है कि यह पांच नमस्कार बोलने से सब पापों का नाश होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो हमारी मान्यता कैसी हुई बहन? के ऐसी हुई कि गंगा नदी में जाके डुबकी मारे, दिन में 23 घंटा 59 मिनट पाप पाप करे और 1 मिनट गंगा में डुबकी मारे तो सब पाप धुल जावे। वैसे हम दिन में समझो एक नमोकार मंत्र बोलने के लिए कितना 20 सेकंड लगता है, मान लो तो 9 बार बोलने में कितना होगा, 3 मिनट लगे हा? तो 23 घंटा और 57 मिनट्स पाप करे और 9 बार नमोकार मंत्र बोले तो सब पाप धुल जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे जीव को नरक क्यों मिलता है? नहीं मिला। अरे क्षायिक सम्यक दृष्टि श्रेणी के राजा, वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि वही होगा जो जिनेंद्र भगवान के पास जाके अपने स्वरूप का अनुभव करेगा, उसको नरक। तो ये तो बात जो बहन कहते हैं ना कि एसो पंचणमो यारो, ये लिखा किसने? हमने थोड़ी लिखा, ये तो अरे भाई आचार्यों ने लिखा है, तो उन्होंने झूठ लिखा है? नहीं, उन्होंने सही लिखा है, लेकिन हम उसका समझने में अर्थ कुछ गड़बड़ कर देते हैं कि यह जो एसो पंच, यह जो पांच पद है, इनको जब हम नमस्कार करते हैं तो जितने समय तक हम उनको नमस्कार करते हैं तब हमारे मन में कोई पाप परिणाम होता ही नहीं है। उस समय हमें हिंसा करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, कुशील सेवन करने का या परिग्रह रखने का परिणाम आता ही नहीं है, तो ये पांच पाप उत्पन्न ही नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि एसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो, यानी सर्व पाप कौन से, ये पांच प्रकार के पाप, इनका नाश होता है। ऐसा होता होगा तो उस गंगा को पापशालिनी कहते थे, तो हम तो कहेंगे कि वह तो पापवर्धिनी है। क्यों साहब? क्यों पापवर्धिनी? क्योंकि आप सबको उकसाती है कि दिन भर पाप करो, एक दफे डुबकी मारो तो सारे पाप धुल गए। तो हमारे पंच परमेश्वर भी ऐसे पापवर्धिनी होंगे कि दिन भर पाप करो और एक 3 मिनट, अभी अपने हिसाब से 3 मिनट नमोकार मंत्र 9 बार बोलो। ऐसा नहीं है, ऐसा अन्याय नहीं है, ऐसी अनीति जैन दर्शन में नहीं है। भाई हम समझने में घोटाला करते हैं या समझाने वाले घोटाला कराते हैं, वो बात जुदी है। तो क्या कहा? एसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलानम च सव्वेसिम पड़मम हवई मंगलम। ये जो मंगल रूप ऐसे जो है वह पढ़ने से हमारा मंगल हो जाएगा। वो अभी अभी लंबी बात हो गई, ये पहले इसका तो आप तो समझ गए ना अर्थ, ये ऐसा अर्थ नहीं है। और सिर्फ देखो अष्ट द्रव्य से पूजित यानी पूजने योग्य ऐसे सच्चे देव गुरु और शास्त्र तीन ही बातें ख्याल में। ये पंचम गुणस्थानवर्ती जीव होगा या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि होगा, वह तो आदरणीय है, नमनीय है, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजनीय नहीं है। ख्याल में आया? अभी आप तो कभी अष्ट द्रव्य से पूजा क्या होता है शायद आपको मालूम नहीं होगा। करती हैं आप 8 द्रव्य से पूजन? हाँ 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 करती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये जो बात है ना, तो किसको करना और किसको नहीं करना, इसका भी कोई विधि निषेध होता है। तो अभी तो आपके ख्याल में आ गया ये पांच पद में देखो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इसमें कौन कौन छिपा हुआ है बताएंगे आप? पांच पदों में हमने तो 3 देखा, सच्चे देव गुरु शास्त्र, तो इसमें से कौन कौन है उधर? हाँ, अरहंत देव है और सिद्ध कौन है, देव है या गुरु है? देव। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और हाँ बरोबर है। देखो आपका क्या कहना है, आप बोलने में जरा सा आगे पीछे हो रही, कोई बात नहीं, देखो यहाँ अरिहंत और सिद्ध देव में गिने जाते हैं, और आचार्य उपाध्याय और साधु ये मुनियों में गिने जाते हैं, गुरु जिसको हम कहेंगे, ख्याल में है? और जो शास्त्र है यानी जो जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो शास्त्र में आएगी, अभी इसमें उसका नाम नहीं लेकिन वो अध्यारत है, उसमें गर्भित है। तो इस तरह से हमें तो ये पांच परमेष्ठी है उन पदों को हम नमस्कार करते हैं। अभी ये जो पद जो है ये अवस्थाएं हैं, ये द्रव्य तो है नहीं, ये गुण तो है नहीं, क्योंकि अगर गुण भी हम समझेंगे कि साधु ये गुण है तो साधु पलटकर देव हो जाते हैं, ख्याल में है ना, अरहंत पलटकर सिद्ध होते हैं, तो यानी वे गुण भी नहीं है, तो है तो पर्याय है, तो ये पर्याय किसकी है ये भी तो हम सोचे ना। हाँ प्रभाव बिना आप जानती है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पर्याय किसकी है, जीव की, कौन से जीव की, बोलो बोलो, बराबर उत्तर है आपका, हाँ आप बताएंगे, हाँ आप क्या कहते लक्ष्मी बहन, ये पांच जो अवस्थाएं हैं जीव की है, ऐसा इन्होंने बताया, हमारे प्रभा बहन ने बहुत सही बताया, मैं तो कौन से जीव की है ऐसा मेरा प्रश्न है, हाँ आपने बताया सम्यक दृष्टि, आप क्या कहते हैं, अच्छा भव्य जीवों की, अच्छा अरे मेरी है कहो ना, घबराते क्यों, क्या तुम्हें मोक्ष नहीं जाना है, और ये अवस्था मिलाए बिना ही आप जाएंगे क्या, हाँ ये हो सकता है कि आप आचार्य नहीं होंगे, ये हो सकता है आप उपाध्याय नहीं होंगे, लेकिन यह तो जीव की अवस्था है ना, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो डायरेक्ट मुनि लेकर श्रेणी मान देवे, उसको जरूर नहीं कि आचार्य भी होना चाहिए और उपाध्याय भी होना चाहिए, लेकिन है तो ये जीव की अवस्थाएं, हम कह रहे जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया उनकी अवस्थाएं थी, हमारा ध्यान तो पर तरफ लगा है, ऐसा कहो मेरा भी यही है, मेरी अवस्थाएं है ये, भविष्य निगम ऐसे है उसमें क्या है, ऐसा नहीं बोल सकेंगे क्या हम, ख्याल में आई ना बात, तो यहाँ तो ये कह रहे हैं, अभी अपनी कौन सी बात चल रही थी कि ये वगैरह वगैरह, ये नहीं किससे बात निकली थी ये, हाँ निर्विकल्प और सविकल्प अवस्था में से हम निकले, तो वो तो नहीं उससे भी नहीं आगे गए थे कहीं, चलो ठीक है सारा भूल गए, यानी मैं ये कहना कह रहा था अभी याद आ गया कि यह जो पांच अवस्था जो है ये अपने स्वभाव का अनुभव किए बिना यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति किए बिना ये प्राप्त होने वाले ही नहीं है। अब यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का भाई इसको ही नमस्कार करो, इसको मत करो, हाँ इनके पैर पड़ो, इनको दूर से ही राम राम करो, ऐसा किसी के पास बात की है, या कोई विशेष व्यक्ति की ही रोजाना आरती करो पूजा करो, ऐसी कहाँ बात है, ये तो राग का सेवन है भाई। यहाँ तो कहते हैं कि जो देव गुरु शास्त्र है वे भी मेरे लिए पर पदार्थ है, कब, कि जब मैं अपने स्वरूप में गुप्त हो जाऊंगा तब मैं उनको जब देखूंगा तो मेरा उपयोग पर में है, जब अपने स्व तरफ मेरा लक्ष्य जाएगा, आचरण रूप अनुष्ठान है ना, ये लीनता रूप रमणता रूप, ये किसमें रमणता करनी है, हमें स्व में करनी है या पर में करनी है भाई, अभी हमारा ऐसा था ना कि हमें विशेष व्यक्ति की हमको महत्ता आनी चाहिए, कहा क्यों भाई, तो तेरा राग बोल रहा है दूसरा कुछ नहीं है, तुझे राग करते करते वितराग की अवस्था कब प्राप्त होनी है, ख्याल में है ना, देखो हम कहां भटक रहे थे पहले ये तो सोचो, अरे ये हमारा मैं कहता हूं कि नसीब ऐसा खुल गया है, ये स्वामी जी जैसा कोई एक जीव हमें निमित्त रूप से प्राप्त हुआ, ओ हो नहीं तो कहां ये बात, ये अपने बिल्कुल दिमाग से बाहर थी बात, हम तो कहीं ना कहीं निमित्त को पकड़ के बैठने वाले थे कि इनका हम सेवा क्या बोलते हैं चेला हो जाऊं तो मेरा भला होवे, कुछ नहीं था, यहां तो कहते हैं कि बाकी अन्य को छोड़कर तुझे अपने स्वरूप में ही जाना है बस, और वही धर्म की शुरुआत है, वही शांति की, वही सुख की शुरुआत है, यहां लिखा ना अभी कहाँ पढ़ रहे थे हम? आएगा वो आगे गया शायद। तो हमने कल कल की जो बात देखी थी, ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये बात हमने अभी देखी है। और यहाँ अभी आप सब लोग लिखते चालू करना, क्या कहाँ कहाँ आत्मा का अनुभव करना करना चाहिए, ऐसी बात आती है। अभी तक तो मेरे ख्याल से पहले भाग में तो 100 पन्ने के 100 बार तो आ गया होगा, अभी इसमें तो हमने गिने नहीं। अभी से चालू करो, हर पेज पे दो दो तीन तीन ठिकान पे होगा। हाँ देखा, हाँ इनका कहना है कि वाइज मैन थिंक अलाइक, मैं कुछ नहीं बोला। भाई ऐसा है कि लोग तो ये मालूम है आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसमें परंतु कितनी बार लिखा है वो भी निकालते हैं, क्योंकि उनकी वो स्पेशलिटी है। वो कुछ 700 800 900 कुछ निकाले थे उन्होंने, मुझे याद नहीं। वैसे यहाँ तो मैं ये क्यों ढूंढना है, ये बार बार हमें उत्तेजित करते हैं, उल्लसित करते हैं, और यही हमें करना है, इस बात की याद दिलाते हैं। अब कहें ये अगला सेकंड पैराग्राफ। हवे कहे छे वड़ी तानि त्रीणी अपि ते त्रणेने निश्चयतः निश्चय नहीं थी आत्मानं च एव, एक आत्मा ज जानी ही एटले जानो। अभी क्या कहते हैं, ए त्रण्य एतरण्य यानी किसको, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन को निश्चय से एक आत्मा ही जानो, क्योंकि यह एक आत्मा की ही पर्याय है। इसलिए कहते हैं कि भले वो तीन बताए तो वहां व्यवहार हुआ, और किसी जीव को कहेंगे कि तू आत्मा का अनुभव कर तो उसको पता नहीं लगेगा, तो उसमें तीन भेद करके बताए कि तेरे में ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, और वो कैसी होगी उसकी भी बात अभी हमको देखी हमने। तो इसलिए कहते हैं ये तीनों जो है वह आत्मा की ही पर्याय है, तो निश्चय से देखा जाए तो वह एक आत्मा ही है। तो कह रहे हैं हवे कहे छे वड़ी ते त्रणे ने निश्चय नहीं थी एक आत्मा जो जानो, हमको वो उपदेश दे रहे, अखंड अभेद एक रूप जे न्यायक भाव स्वरूप आत्मा ते एक नु सेवन करता तेमा ए त्रणे पर्यायो आवी जाय छे। पण त्रण पर्याय नु लक्ष्य करवू ए व्यवहार नहीं छे, क्योंकि वहां भेद हो गया ना। दर्शन ज्ञान चारित्र तो निश्चय छे, एटले निश्चय रत्नत्रय छे, पण अखंड एक निश्चय स्वभावनी अपेक्षा ए त्रणे पर्याय छे। क्या कह रहे, देखो ये क्या कह रहे कि जैसा हमने देखा ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग भी बताया था, तो यहाँ पर तो ये समझा रहे कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये तो निश्चय है और निश्चय रत्नत्रय है। वहां पर निश्चय रत्नत्रय है लेकिन क्या कह रहे हैं कि पन अखंड एक निश्चय स्वभावनी अपेक्षा है, यानी जब हम वह पर्याय की तरफ नजर न करते हुए एक आत्मा की तरफ ही जब हम ध्यान देते हैं, तो वह कह रहे कि एक निश्चय स्वभाव की अपेक्षा जैसे हम देखेंगे तो वह तीन जो बातें बताई वह व्यवहार हो जाएगा। ये अपेक्षा है त्रणे पर्याय छे अने तेती व्यवहार छे अने तेती तेने मलिन कहवामां आव्यो छे, कि भेद हो गया ना, तो भेद में तो विकल्प उठेंगे। झीणी बात छे भाई, पन अलौकिक बात छे। शू कहे छे फिर से समझा रहे, ये नहीं समझेगा तो पूछना हो। देखो क्या कह रहे, ए त्रणे ने, त्रणे ने याने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय नहीं थी एक आत्मा ज जानो, अंतर न्यायक भावनी एकाग्रता थवा थी ये त्रणे निर्मल पर्यायो थई जाय छे। ये पर्याय कब होगी कि जब अपने स्वभाव में एकाग्र हो जाएगा तो ये तीनों पर्याय ऐसे निर्मल बन जाएंगे। परंतु ये पर्याय नु लक्ष्य करी तेमनो आश्रय करवा योग्य नथी। यानी जो स्वयं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप पर्याय है उस पर्याय का ही हम अवलंबन लेंगे तो हमें राग द्वेष की उत्पत्ति हुए बिना रहेगी नहीं। तो जो स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय है उस पर्याय का अवलंबन नहीं लेना है। वो पर्याय जिसमें से पैदा हुई है ऐसा जो त्रिकाली एक अध्यायक स्वभाव है उसका आश्रय लेने से तीनों निर्मल पर्याय उत्पत्ति होगी। लेकिन वो पर्याय का अवलंबन लेना नहीं है, त्रिकाली स्वभाव का लेना है। फिर से देखो, ए त्रणे ने निश्चय थी एक आत्माज जाणो, अंतर न्यायक भावनी एकाग्रता थवाती ए त्रणे निर्मल पर्याय थई जाय छे। परंतु ए पर्यायनु लक्ष्य करी तेमनो आश्रय करवा योग्य नथी। हे निश्चय मोक्ष मार्गनी पर्याय आश्रय करवा लायक नथी। ए त्रण छे माटे व्यवहार छे, आ निश्चय मोक्ष मार्ग पण व्यवहार छे। क्योंकि तीन बातें बताई इसलिए उसको व्यवहार कहा। गजब बात, भगवान आ मार्ग तो अत्यारे गायब एटले गुम थई गयो छे। मोक्ष मार्ग थी विरुद्ध बहारनी बधी कड़ाकूट थई गई छे। अहीं तो भगवान कुंदकुंदाचार्य कहे छे के ए त्रणेने निश्चय थी एक आत्मा ज जाणो, लियो आ अंदर मां एवो आत्मा विराजमान छे। यानी दरेक जीव में ऐसा परमात्मा परमात्मा विद्यमान है जिसका हमें अवलंबन लेना है। देखो अभी यहां तो ये तो गाथार जो था उसके ऊपर उन्होंने बताया, अब टीका ऊपर का प्रवचन बताते हैं। आ आत्मा जे भावती साध्य तथा साधन थाय ते भावती ज नित्य सेववा योग्य छे। अभी क्या बता रहे हैं कि यह जो साधन रूप जो भाव है ना उससे तो नित्य नहीं होगा, क्योंकि स्वरूप में एकाग्रता है तब तक वह है, लेकिन बाहर आवे तो वह नित्यता कहां रही। इसलिए साध्य अवस्था प्राप्त करो, इसलिए अपने को इंड्यूस कर रहे क्या कहते हैं, आ आत्मा जे भावती साध्य तथा साधन थाय ते भावती ज नित्य सेवा योग्य छे। आई एम कहे छे के आ आत्मा जे भावती साध्य एटले मोक्ष तथा साधन एटले मोक्ष मार्गनी पर्याय थाय ते भावती सेवा योग्य छे। वास्तव में ऐसा है, जो साधन है यानी आत्मा में लीनता है वही साध्य तक पहुंचाएगी। वही बात जो है, वही पर्याय जो है, यानी वो एक के बाद होने वाली पर्याय जो हम क्षपक श्रेणी में कहते हैं कि भाई एक अंतर मुहूर्त, तो वो जो साधक दशा जो है वही हमें साध्य तक पहुंचाएगी। कि इसलिए कहते एटले थर्ड लाइन मोक्ष मार्गनी पर्याय थाय ते भावती सेवा योग्य छे। निश्चय मोक्ष मार्गनी पर्याय ए साधन छे, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ए साधन छे, पण व्यवहार रत्नत्रयनो विकल्प ते साधन नथी। आई अस्तिति कथन करियूं एमा नास्ती आवी गई। यानी क्या कहना चाहते हैं कि यह निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही एकमेव मार्ग है, वही सेवन करने योग्य है। इसका अर्थ अन्य कोई भी मार्ग सेवा योग्य नथी। आई अस्तिति कथन करियूं, यानी क्या करने का वह बात बताई, इसका अर्थ क्या हो गया कि अन्य कोई मार्ग नहीं है, ये बात भी उसमें दाखिल हो गई। अभी जब हम कहते हैं ये जो पर्स है ना, ये पर्स ये कौन सा कलर का है, ब्लैक, इसका अर्थ वो व्हाइट नहीं, ये नक्की हो गया कि नहीं। अस्ति से जो बताया गया तो नास्ति से उसमें ब्लू नहीं है और अन्य जितने भी कलर है उस रूप नहीं है, लेकिन ब्लैक है। तो जब अस्ति से कथन किया तो उसके अंदर नास्ति से कथन गर्भित है ना, तो वही यहां बता रहे कि आए अस्तिति कथन करियूं, सानु अस्तिति कथन करियूं के निश्चय मोक्ष नहीं पर्याय था ये साधन छे। और उसके साथ में क्या कहा, व्यवहार रत्न त्रय जे छे तेनो विकल्प जे छे ते साधन नथी, दोनों एक है और नथी। तो इसलिए कह रहे हैं वस्तिति कथन करियो एमा नास्ती पण आवी जाई। आ आत्मा ने जे भाव थी पोतानो आश्रय करवाथी, एटले ये जे भाव थी अने आ आत्मा ने पोतानो आश्रय करवाथी पूर्ण साध्य एटले मोक्ष प्रकट थाय छे, तथा जे भावती पोतानो आश्रय करवाथी वर्तमान साधक भाव एटले मोक्ष मार्ग उत्पन्न थाय छे, ते भावती एक आत्मा ज नित्य सेवा योग्य छे। यानी यह मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करने के लिए भी आत्मा में ही एकाग्र होना है, और जो मोक्ष अवस्था है वह भी प्राप्त करने के लिए आत्मा ही, मतलब उसमें ही एकाग्र होने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं झीणी बात भाई, पन अनंत काल थी पोतानी जे अखंड अभेद चीज छे एनी दृष्टि क्यारे करीज नथी, ने शास्त्र सगड़ा भणे पन अंतरदृष्टि न करे तो तेती शुं। देखो ऐसा कहते हैं, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी हो तो भी कहते हैं उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यानी क्यों, क्यों कि उसने स्वतरफ दृष्टि उठाई नहीं है। ये कहते हैं ना अनंत काल थी पोतानी जे अखंड अभेद चीज छे, कौन स्व, एनी दृष्टि क्यारे करीज नथी। क्योंकि बात ऐसी है ना, मेरे में ज्ञान गुण भी है और श्रद्धा गुण भी है, लेकिन ज्ञान गुण का कार्य करेगा, श्रद्धा पलटाने के लिए ज्ञान कुछ कार्यकारी नहीं है। तो उसने तो बहुत कुछ जाना, मुखोद्गत भी हुआ, सारा कंठस्थ हुआ, फिर भी मैं इस रूप हूं ऐसी श्रद्धा नहीं हुई, तो कह रहे कि उसको कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कहते हैं, शास्त्र सगड़ा भणे पन अंतरदृष्टि न करे। यानी अभी निर्विकल्प अंतरदृष्टि की बात आई थी ना, दृष्टि तो निर्विकल्प श्रद्धान हुआ, वो बात नहीं हुई उसकी, ये कह रहे हैं। तो तेतीशु यानी बहुत पढ़ा हो, लाखों लोगों को समझा सकता हो, लेकिन स्वयं नहीं समझा स्वयं को, तो कुछ फायदा नहीं है। शू कहे छे, आ आत्मा जे भावती साध्य एटले एनो अर्थ मोक्ष, अने साधन एटले मोक्षोपाय थाय ते भावथी ज नित्य सेवा योग्य छे, एम पोते इरादो राखीने बीजाओने व्यवहारथी प्रतिपादन करे छे के साधु पुरुषे दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवा योग्य छे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ए त्रणे पर्याय छे, तेती व्यवहार छे। एक आत्मा जे ज्ञायक भाव पूर्ण आनंद स्वरूप एक स्वभावी छे, एनी सेवा करवी ते निश्चय छे, परमार्थ छे। ये यहां जरा देख लेना, एनी सेवा करवी यानी उसमें एकाग्र होना हो, अन्य कुछ मत लेना। तो हम तो दूसरे किसी की सेवा करते थे, अभी तुम आत्मा की सेवा करने को बता रहे क्या, ऐसा मत पूछना। ये आत्मा की सेवा करने का अर्थ आत्मा में एकाग्र होना, लीन होना, उसी का अवलंबन लेना। देखो भाई, जहां शब्द जो आएंगे ना, वो शब्द का शब्दशः अर्थ मत लेना, तो कहीं भूल नहीं हो जावे। देखो आगे आएगा क्या कह रहे, देखो। एक आत्मा जे ज्ञायक भाव पूर्णानंद स्वरूप एक स्वभावी छे, एनी सेवा करवी ए निश्चय छे, परमार्थ छे। पेला पण एम कह्युं के आत्मा सेववो, परंतु एवा अभेद कथन थी व्यवहारी जन समझी शकतो नथी। आत्मा ने सेववो, आत्मा का सेवन करना ये बताया, लेकिन उसका अर्थ सो कॉल्ड जनरल लोग नहीं समझते हैं। तेथी तेने ज्ञान दर्शन चारित्रना भेद पाड़ी ने व्यवहार थी समझाएवुं के साधु पुरुषोए दर्शन ज्ञान चारित्रनु सेवन करवुं भगवान आत्मा ते निश्चय छे, अने तेनी अपेक्षाए आ दर्शन ज्ञान चारित्र एम त्रण पणानु सेवन केवुं ते व्यवहार छे। व्यवहार छे मेचकपणु छे, मेचकपणु यानी उसमें, हाँ जी अनेकपना, आप क्या कह रहे हैं? हाँ मलिनपना भी दिया है परंतु अनेक प्रकार, यानी भेद किया ना, एक आत्मा उसके हमने तीन भेद किए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उसका मेचकपना है, अनेकपना ठीक है। वो मलिनपना इसलिए है कि वह निश्चय नहीं है ना। हाँ लिखा हाँ इधर ही आप पीछे देख रही है श्लोकार में, वो आगे आए, वो अभी हमने कलश नहीं पढ़ा है, कलश में आएगी वो बात 17 नंबर के, मेचकपणु छे मलिनपणु छे अनेकपणु छे, ये आ गया ना यहाँ। यानी आत्मा का हमने भेद कर करके समझाया, क्यों? समझने के लिए, तो इसलिए उसमें अनेकपना है। अब हम अनेक जगह हमारी दृष्टि बट गई तो हमने अखंड आत्मा को देखा नहीं, इसलिए अभेद अखंड एक ऐसा हमने याद कराया था ना, वो इसलिए। तो अभी हमारा क्या हो गया, अरे ज्ञान दर्शन चारित्र, अरे अलग अलग तीन तरफ नजर गई, तो वो मेचकपणु थी, यानी उसमें अनेकपना आ गया। तो वह मेचकपना आया तो पर्याय पर दृष्टि गई, तो इसको राग आया, राग आया तो वो मलिनपना हो गया। इसलिए क्या कह रहे हैं, मेचकपणु छे मलिनपणु छे अनेकपणु छे, दर्शन स्वभाव ज्ञान स्वभाव चारित्र स्वभाव इत्यादि अनेक स्वभाव थी जाए छे, तेथी ते व्यवहार छे, व्यवहार थी उपदेश मा आ प्रमाणे कथन आवे छे, पन आशय तो एक शुद्ध निश्चय आत्मानु सेवन करावानो छे। लोको तो माने कि अत्यारे पांच महाव्रत अने 28 मूलगुण पाड़े ए साधु। देखो यहां पर आप लोग ऐसा मानते हैं या मानते होंगे कि स्वामी जी वो अपना संप्रदाय छोड़कर यहां आए, इसलिए वे उनके ही मतलब विरुद्ध है, ऐसा नहीं। वे तो जो सत्य बात है उस सत्य की ही बात कहेंगे, जो आगम के अनुसार है। अभी यहां जो बात आने वाली है ये जरा देखना आप क्या कह रहे हैं। लोको तो माने के अत्यारे पांच महाव्रत अने 28 मूलगुण पाड़े ए साधु, यानी साधु किसको कहना चाहिए कि जिसके तीन कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता वर्तती है। तो इनके तो बाह्य 28 मूलगुण सहज रूप से पलते हैं, पालने नहीं पड़ते। और यहां क्या कह रहे हैं, अत्यारे पांच महाव्रत ने 28 मूलगुण पाड़े ए साधु, पन भाई साधु ने माटे आहार बनावे, अने जो ते आहार साधु ले तो ते द्रव्यलिंगी पन नथी। ये बात समझ में आई? हाँ नहीं ना, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे थे अश्विन भाई, देखो जरा ध्यान देना, बात तो ऐसी है कि जो साधु होते हैं उनके पांच महाव्रत मालूम है आपको, नाम मालूम है पांच महाव्रतों का आपको मालूम है? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ प्रॉम्प्टिंग कर दिए क्या? हाँ हाँ कल ही पूछा था, जब भूल गए आज तक। हाँ कौन बताना? हाँ हाँ क्या ये सही कह रही है? हाँ हाँ कौन बताना चाहते हैं? हमारी दिव्या बहन बताएगी पांच महाव्रत के नाम जोर से। अहिंसानु व्रत, हाँ हाँ अभी लाइन पे आई। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, हाँ ब्रह्मचर्य, नहीं तो अब्रह्मचर्य बोलना नहीं गलती से, हाँ ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये महाव्रत है वो। ये तो तुम सत्य वगैरह वगैरह जो तो ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो पाप पांच नाम बता रहे, ऐसा उसके विरुद्ध बताना वो बराबर नहीं है, ये महाव्रत है। अब यहाँ दो नंबर का हमने पहला नंबर का कौन सा देखा व्रत? अहिंसा महाव्रत। अब देखो थोड़ा समय आपको समझाना चाहता हूं कि अनुव्रत जो होता है, यानी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के अनुव्रत होता है, उनके द्वारा त्रस जीवों की हिंसा तो होती नहीं, लेकिन चाहते नहीं फिर भी स्थावर जीवों की हिंसा उनसे टलती नहीं है, वो करना चाहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसने उतने वो उसको पाल नहीं पाते। स्थावर यानी समझ में है ना, पांच एकेंद्री। लेकिन ये मुनिराज जो होते हैं उन्होंने महाव्रत धारण किया है, तो उनके ना त्रस जीवों की हिंसा होती है और ना स्थावर जीवों की हिंसा होती है। अब आप घर में खाना बनाती है ना, तो खाना बनाने में कुछ जीवों की हिंसा होती होगी क्या? कौन सी जीवों की हिंसा होती है? वो रसोई बनाती है, मुझे मालूम है। हाँ बोलो, कौन से? एक केंद्रीय बराबर, पर कौन से? हाँ वनस्पति और हाँ अच्छा जल का है, बहुत अच्छा। हाँ अरे अग्नि का है, हाँ चूल्हा जला दिए कि नहीं, हाँ गैस चलाती है जो भी है, तो उसमें अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है। ये तुम्हारे हमारे ग्रस्तों को ये हिंसा वैसे देखा जाए तो एक माफ है एक प्रकार से, लेकिन हिंसा तो हो रही ना आपके हाथ से। अब यहां क्या समझा रहे देखो, के साधु ने माटे आहार बनावे, साधु ने माटे यानी अभी मैं कल आपके यहां आने वाला हूं, तो उनके लिए हमें खाना बनाना पड़ता है, तो हमने उनके उद्देश्य से आहार बनाया। तो हमने जो कोई पाप किया है बनाने में, तो उसके लिए उन साधु की अनुमोदना हुई कि नहीं? तो फिर उनके अहिंसा महाव्रत कहां रहा? तो मैंने तो किसी को बोला नहीं है, मैं आपके घर में आने वाला हूं कल, किसको बोलना नहीं, लेकिन मैं आऊंगा। तो मैंने अहिंसा व्रत तोड़ा और सत्य महाव्रत रहा के चोरी हुई किसको बिना कहे ख्याल में आया? अरे तो यहां कह रहे हैं कि साधु ने माटे आहार बनावे आने जेओ ते आहार साधु ले, हमने तो ऐसा सुना है, हो देखा नहीं है। काले हमें आओ सू अमर माटे इडली बनाओ, जो खटका खमन के गाय गेहूं कहवा हो ये बनाओ, जो भी होता होगा आपने जो खिलाया होगा आपको मालूम, ख्याल में आया ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस मुनि के अहिंसा व्रत पला क्या? अरे एक व्रत टूटता है तो बाकी पांचों उड़ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं, अभी फिर से पढ़ता हूं देखो, भाई साधु ने माटे आहार बनावे अने जो ते एटले ते आहार साधु ले तो ते द्रव्यलिंगी पण नथी। अभी द्रव्यलिंगी किसको कहना? सुनना कि जो मुनिराज अभी उनके आत्मानुभूति तो हुई नहीं है, लेकिन 28 मूल गुण तो यथोचित यानी यथा उचित यानी यथा योग्य आगम से जैसे कहे गए हैं उस अनुरूप वह 28 मूल गुण का पालन भी करते हैं, फिर भी आत्मानुभव नहीं है, उसे द्रव्यलिंगी मुनि कहेंगे। बाह्य में नग्नत्व है, सब है, चार हाथ जमीन देख के चलेंगे, रात में इधर उधर नहीं घूमेंगे, रात में किसी से बात भी नहीं करेंगे, ये सारी बातें वो बिल्कुल पालते हैं। और क्या 46 दोष और 32 अंतराय रहित भोजन भी लेंगे, कौन? ये द्रव्यलिंगी मुनि। फिर भी आत्मानुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो उन्हें द्रव्यलिंगी कहेंगे। तो यहां क्या कह रहे हैं कि साधु ने माटे आहार बनावे आने जो ते आहार साधु लोए तो ते द्रव्यलिंगी पण नथी, ख्याल में आया? तो अभी आप सोचना, घर घर में जाके बेल बजा के डब्बा दिखावे, हाँ कहां रहे वो? निश्चय तो नथी पण व्यवहार ना ही ठिकाना नथी। क्या बताया? निश्चय नहीं याने आत्मानुभूति तो है नहीं, लेकिन व्यवहार से भी ये सही नहीं है, ठिकाना नहीं। कोई कहे एम कहे के निश्चय होए पची व्यवहार गम्मे ते वो होए, व्यवहार नु शू काम छे? ये याने एस्केपिज्म। तो ते बात बराबर नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रवंत साधु ने पांच महाव्रत तथा 28 मूलगुण आदि नो व्यवहार यथार्थपने होय छे। साधु ने माटे चोको बनावे ये चोको बनावे, समझ में है ना। अने साधु ते आहार ले एवं प्राण जाए तो पन त्रण काल मा बने नहीं। यानी अगर सही साधु होंगे और उनको पता लगे, समझ में आए कि मेरे लिए इन्होंने खाना बनाया है, तो वहां आहार लेंगे नहीं। भले उनको उपवास क्यों न होवे, लेकिन वो लेंगे नहीं। सच्चे साधु की बात चल रही। तो कह रहे साधु ने माटे चोको बनावे अने साधु ते आहार ले वो प्राण जाए तो पन त्रण काल मा बने नहीं। लोको एम कहे छे के शरीर रहे तो प्राण टके अने तो धर्म थाय, पन एथी तो धूळे धर्म नथी। हामळने वो हामळने नहीं दिए याने कहते हैं कि मेरा शरीर टिके तो मैं अपने आत्मा का अनुभव कर सकूंगा। याने तूने दूसरे के बदौलत धर्म होता है ऐसा माना। हाँ तो कहे छे के आत्मा मा रहे, आत्मा मा टके तो धर्म थाय। बोलो प्रतिभा जी, ये ऐसी बात है। और हम क्या मान रहे थे और क्या असलियत है, ये सोना सोना और पीतल पीतल सामने आ गया। सभी पीला है, नहीं समझ में आया तुम्हारे। ये अपना फ्रेम रहता है ना हमारा, ये तो एक एक फ्रेम में दस दस पांच पांच अलग अलग भगवान को बिठा दो चले। तो ये सोना सोना है और पीतल पीतल है, फ्रेम डालने से कोई भगवान नहीं बनता है क्या। कह रहे कि आत्मा मां रहे टके तो धर्म थाय। भगवान शुद्ध त्रिकाली न्यायिक नी दृष्टि मां रहे तो धर्म थाय। यानी धर्म कब होगा, कि पांच परमेष्ठी का नाम लेने से। तो कैसा, हाँ भगवान शुद्ध त्रिकाली न्यायिक जो है ये दृष्टि मां रहे, यानी उसकी श्रद्धा हो जाए, उसी का मनन चिंतन भले ना अभी शुद्धोपयोग में नहीं हो, लेकिन बार बार उसी की याद आए तो कहे के तो धर्म थाय। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके शुद्धोपयोग बहुत काल तक नहीं टिकता है, लेकिन शुद्ध परिणति रहती है और उस शुद्ध परिणति के अनुसार उसके उतने कर्म भी नहीं बनते और अनेक प्रकार की निर्जरा भी होती है। खुद हम जानते हैं 41 प्रकृतियों की निर्जरा उनकी होती है। तो कहते हैं तो धर्म थाय। हाँ जी सुना नहीं। इकतालीस प्रकृतियों बनती नहीं ना उनके,
संवर होता है उसका।
अच्छा संवर होता है तो बनती भी तो नहीं ना।
बनती नहीं है उसी को संवर कहा।
हाँ अस्थिमा नास्ति गर्विच्छ। हाँ कोई बात नहीं, क्या कह रहे भगवान कुंद कुंद आचार्य देवे। आ सोलमी गाथा मां सोल वल्लू सो टचनू सोनू बतायू छे। या अभी जिनके पास सोना है वो तो जानते होंगे क्या कहना चाहते हैं, हम तो कुछ नहीं समझते हैं। पांच महाव्रत अने 28 मूलगुण ए चारित्र नथी। क्या बताया हा? देखो ये पैर के नीचे की जमीन खिसक जाए ऐसी बात है। ये भले भले को पसीना छूटे, क्योंकि वस्तु कभी हमने सुनी नहीं ना। ये जो जिनेंद्र भगवान ने बताया हुआ जो मोक्ष मार्ग है उसको कभी हमने सुना ही नहीं है। बस उपलक उपलक सारी बातें देखी और हे क्या जय जलाराम क्या बोलते हैं जय नारायण यानी चलो आया कोई सलाम ठोको। हाँ ऐसी बात है। देखो क्या कहते हैं, पांच महाव्रत ने 28 मूलगुण ये क्या है, शुभ परिणाम है। तो ए चारित्र नथी पन सूचे आश्रव अने बंधनूज कारण छे। प्रभावेन आवी बात सांभळी हती पूरी है। हाँ जो हामळो क्या कह रहे ए, ए कहते कि ये आश्रव छे 28 मूलगुण पालन करने के जो परिणाम है वो आश्रव है और बंधनु कारण छे। हाँ निश्चय आत्मा मा अनुभव रूप चारित्र होए, यानी निश्चय चारित्र कोने कहवाए के आत्मा ना अनुभव रूप तो आने व्यवहार चारित्र नो उपचार आवे। आने याने ये जो 28 मूल गुण और 5 महाव्रत आदि जो पालन हो रहा है ना, तो उसको उपचार से चारित्र ऐसा कहने में आएगा, व्यवहार चारित्र है। तेम छता ए छे तो बंधनूज कारण, कितना ठोक बजा के एक एक बात बताई है कि कहीं हम फिसल न जाए। आए एनी बात नथी पाछो, तो यहां जो आई तो कहे छे के आत्मा जे परिपूर्ण शुद्ध वस्तु छे, तेज साधक पने ज्ञान पने परिणमे छे। क्या कह रहे हैं देखो देखो, अभी यहां जरा सा शांति से सुनना, अभी थोड़ा सा हमने लाइट विषय लिया है, अभी यहां तो बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। देखो समझना कि आत्मा जे परिपूर्ण शुद्ध वस्तु छे, तो ये कौन परिणम रहा है? आत्मा ज तेज साधक पने परिणमे छे, यानी यहां जो पर्याय है उस रूप पूरा आत्मा है ऐसा बताया। ये आत्मा कैसा है? साध्य भाव है, और वही साधक पने से अभी परिणमित हो रहा है। क्या क्या के लिए? साध्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए क्या कह रहे हैं? आत्मा जे परिपूर्ण शुद्ध वस्तु छे, तेज साधक पने एटले ज्ञान पने परिणमे छे, अने ते साधक भावनु परिपूर्णतामा परिणमन ते साध्य। आ गई ना बात? यानी साध्य भी स्वयं है और साधक भी स्वयं है। तो यहां कहते साध्य ही साधक भाव से परिणमित हो रहा है। क्यों साहब? साध्य प्राप्त करने के लिए। कुछ प्रश्न है साहब? ख्याल में आई ना बात? बहुत आसान है। अने साधक भावनु परिपूर्णतामा परिणमन ते साध्य छे। आत्मा पोतेज अपरिपूर्ण साधक भावे अने परिपूर्ण साध्यपने परिणमे छे। अब ये पर्याय में आत्मा को लिया दोनों तरफ, यानी त्रिकाली जो आत्मा है उसको साधक भाव में भी लिया और साध्य भाव में भी लिया। कहते हैं साधक भावे अने परिपूर्ण साध्यपने परिणमे छे। अभी आगे बहुत मार्के की बात है। वचमा बाह्य व्यवहार क्रिया आवे छे तो मोक्ष मार्ग थाय छे एम नथी। तो बाह्य में जो व्यवहार क्रिया यानी जो कोई शुभ परिणाम आते हैं, तो शुभ परिणामों की जो कोई क्रिया है तो ई कई मोक्ष मार्ग नथी। तुमको मालूम नहीं इसलिए बताता हूं, जब हमने 10-8 साल पहले जो भी होगा 10 साल पहले यहां, वैसे तो यहां 12 साल से चालू है, 13 साल से 1992 से 12 साल, तो हमारे बिल्डिंग में रहने वाले लोग पूछते थे, हे दिनेश भाई सुन, तमे सामायिक भणावो छो? मैं बोला कहीं भी सामायिक, मैं खुद ही नहीं जानता सामायिक क्या है तो मैं क्या सिखाऊं, क्योंकि सामायिक तो हमने उसी को ही समझा है, माना है, और वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जो अपने स्वरूप में एकाग्र हो गया है उसी को सामायिक कहा है। तो ये समूह बनावानु, ये तो पोते अनुभवानु हो, तो ये बात उनकी क्या पल्ले पड़े? तो जाने आने वाले को रोके, ये हिंदू बहन रुक जाओ, जाना नहीं, क्यों? वहां सामायिक नहीं सिखाते। ख्याल में? अब क्या करे, अब जो वस्तु स्वरूप है वो जाने नहीं, इसलिए यहां लिखा ना वचमा क्यारे के जारे सम्यक दर्शन प्राप्त थईने चौथु गुणस्थान प्राप्त थाय पछी पांचमू आवे पछी मुनिपद आवे त्या वच्चे वचमा बाह्य व्यवहार क्रिया आवे तो मोक्ष मार्ग थाय छे एम नथी। यानी जो कोई शुभ परिणाम है वे शुभ परिणाम कोई मोक्ष के मार्ग में अपने को उपयुक्त है ऐसा नहीं। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, सबको पूछूंगा कि ये जो पांच परमेष्ठी जो है वह हमारे लिए साधक है या बाधक है? बोलो बेन। जो आपको बोलना है बोलो। हाँ बाधक है। अच्छा आप क्या कहते हैं? साधक है। अच्छा हाँ दोनों नहीं? अरे वाह, क्यों 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 दोनों नहीं? बोलो बोलो। आपका उत्तर 100% सही है और आप बोलते हैं मेरे को कुछ समझता नहीं, मैं आऊं क्या नहीं आऊं, इतना बढ़िया उत्तर देती है। मैं बताता हूं क्योंकि टाइम नहीं है अभी। देखो ये तो मेरे लिए पर पदार्थ है, मेरे ज्ञान के गेय है, सात तत्वों में बोलना है तो वो मेरे लिए अजीव तत्व है, वो मेरे ज्ञान का गेय है, तो वह मेरे लिए ना साधक है ना बाधक है, क्योंकि वो तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है। हमने उनको साधक माना है और हमने उनको बाधक माना है, ना के वे साधक है और ना के वे बाधक है, पर मेरे लिए तो गेय है। ख्याल में आया? देखो साहब ये ऐसी बातें हमें समझनी चाहिए। अब आगे की बात साधु पुरुषों की जो है, वो कल जो आएंगे साधु पुरुष उनके सामने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकर्ण मो सदा देत गोलो।